प्रेम से कहना, सत्संगत आज यहाँ जमुना पार के इस इलाके में इस सत्संग के रूप में आपके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, जहाँ पर आप सभी मिल बैठकर इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा के गुणगान कर रहे हैं, जहाँ पर एक उत्तम संदेश दिया जा रहा था, जो संदेश कल्याणकारी है। और केवल संदेश कल्याणकारी नहीं होता, उस संदेश की अहमियत का एहसास करके जब उस तरफ बढ़ते हैं, जब वो कदम उठाते हैं, तब उस संदेश की हमारे जीवन में सार्थकता बनती है। इसीलिए महापुरुष संत जनों ने ये पैगाम, ये संदेश, ये युगों युगों से दिया है। हर मानव का कल्याण जिसमें छिपा हुआ है, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने वही मार्ग हर इंसान के सामने रखा है। जो संतों, महात्माओं ने, भक्तों ने युगों युगों से संसार को जो देन दी, वो इसी रूप में दी है। जो एक इंसान अपने दोनों जहानों की बाजी जीत ले, इस लोक और परलोक दोनों को संवार ले, इस आत्मा का उद्धार हो जाए, जन्मों जन्मों का बोझ जो उठा के चलती चली जाती है, नाना शरीर धारण करती चली जाती है, नाना प्रकार की योनियों में इसका गुजरना होता है, तो ऐसी आत्मा, हर किसी की आत्मा, उसका भी उद्धार हो जाए। उसी लिए महापुरुष संत जन ये संदेश और ये पैगाम ये देते आए हैं, ताकि इंसान इस तरफ जागरूक हो, इस तरफ कदम बढ़ाए और इस प्रकार से जो विधि बताई है उस अनुसार, यानी कि ब्रह्म ज्ञानियों का संग करके इस अज्ञानता के अंधकार को दूर करें, आत्मा परमात्मा की अंश होने के बावजूद जो इसी से बिछड़ी हुई है, इसी से इसका नाता जुड़ जाए, और ताकि इस आत्मा के भी भ्रम मिटें और ये भी अपने असली रूप में स्थित हो जाए। तो इसलिए आज भी यही संदेश, ये पैगाम दिया जा रहा था और युगों युगों से दिया जाता रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये परमात्मा ईश्वर निराकार शाश्वत है, ये भी शाश्वत सच्चाई है कि इसी से नाता जोड़कर ही आत्मा की गति होती है, इस आत्मा का कल्याण होता है और हमारे जीवन को सच्चा आधार मिलता है। तो ये भी एक शाश्वत सच्चाई है। अगर परमात्मा के बारे में कहते हैं कि तीन काल है सत्य तू, अगर तीनों काल तू ही सत्य है, बाकी तो फिर सत्य जो नहीं है वो फिर झूठी होगा। तो इस संसार और संसार की बनावट जो कुछ भी रचना में आई है, इस सब को सत्य की संज्ञा दी नहीं गई है। तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार, कि तीनों काल तो ही सत्य है। जहाँ तक परमात्मा के बारे में, इस परम सत्य के बारे में जब ये कहा जा रहा है कि तीनों काल तो ही सत्य है, सुबह शाम दिन रात तू ही सत्य है। कोई भी दौर हो, कोई भी युग हो, कोई भी सदी हो, कोई भी स्थान हो, तेरी सत्यता उसी प्रकार से बरकरार रहती है। तेरा मौसमों की तरह बदलना नहीं होता है, काल में तो बंधा हुआ नहीं है, स्थानों के साथ बदल नहीं जाता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। ये यूनिवर्सल एंटिटी ऑल प्रिवेडिंग, ये कणकण में व्याप्त सदैव कायम दायम रहने वाली, बाकी रचना जिसको कहते हैं, रचना जो भी होती है उसका कोई रचनहार भी होता है, लेकिन परमात्मा जिसको सत्य कहा जा रहा है, ये स्वयं भू है। इसकी कोई रचना करने वाला नहीं है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। मिटता वही है जो बनता है, लेकिन ये बना ही नहीं है तो इसका मिटना कैसा, इसका मिटना संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये सत्य, इस सत्य से नाता जोड़ने, सत्य का आधार लेना, यही महापुरुषों ने युगों युगों से प्रेरित किया है। और जिस जिसने भी इस तरफ ध्यान धरा, जिस जिसने इसको अहमियत दी, उसने ही उस तरफ कदम बढ़ाए, और जिनके हिस्से में ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग मिल गया जिनको, तो उनका ही उद्धार हो गया, उनको ही जीवन जीने का सलीका आ गया। वही वास्तविकता में ऐसे नज़रिए वाले बन गए जिस नज़रिए से युक्त होकर जब जीवन जिया गया, वो ऐसा नज़रिया था जो एक करीब करके देखने वाला था। ऐसी नज़र क्योंकि मिल गई जिस परमात्मा को दूर माना था, उसी को करीब ते अति करीब जान लिया। तो ऐसी नज़र मिली है तो फिर जीवन जीने का नज़रिया भी फिर उसी अनुसार बनता चला गया। फिर वो नज़र थी जो करीब करके देखने वाली थी, जब परमात्मा को ही करीब देख लिया जिस नज़र ने, फिर दुनिया में इस सफ़र को तय करते हुए भी उसी नज़र के द्वारा ये जीवन में बदलाव आ गया कि अब वो नज़र है जो बाकियों को भी दूर करके नहीं देख रही है, उनको भी नज़दीक करके देख रही है। नज़दीक करके देखने का मतलब अपनेपन का भाव प्रबल हो गया है, अब दूसरों को एक बेगाना करके नहीं देखा जा रहा है, दूसरे को नीचा करके नहीं देखा जा रहा है, जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि चाहे फिजिकल दूरी ना भी हो, लेकिन ये दूरी जो मनों में होती है, ये दूरी वाकई बहुत दूर हमें कर देती है। तो यहाँ पर भी उस नज़रिए की बात हो रही है जो करीब करके देखती है कि ना को बैरी ना ही बेगाना, कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं है, सबको अपने करीब जानते हैं कि ये इंसान के रूप में है, ये खुदा का बंदा है, यानी कि परमात्मा ईश्वर निराकार, इसकी अंश आत्मा हर किसी में बसती है, और सभी पांच तत्व के पुतले हैं, कुम्हार एक है, इसी ने नाना प्रकार के ये घड़े, ये बर्तन उस एक ही मिट्टी से, यानी कि पांच तत्वों से उसका उपयोग करके इनकी सृजना की है, इनकी रचना की है। तो इस तरह से वो नज़रिया बन गया, इसीलिए किसी को फिर पराया करके देखा नहीं गया है। फिर संसार में बसने वाले हर किसी को अपना माना गया है कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, ये भी उसी परिवार का हिस्सा है, ये मखलूक सारी है कुंभा खुदा का, कि सारी मखलूक सारे इंसान एक कुंभे का अंग है, और वो कुंभा, वो कुटुंब, वो परिवार, वो खुदा का परिवार है। तो इस तरह से जब नज़र बन गई तो फिर वैर ईर्ष्या नफरत वो हमारे जीवन से दूर होते चले गए, यानी कि मन में कदूरत का भाव वो धूमिल होता चला गया, क्योंकि जब अपनेपन का भाव प्रबल हुआ वहाँ पर द्वैत का भाव जाता रहा। इसीलिए कहा है कि बिचारे दूजा भाव जियो, कि दूजा भाव यानी कि द्वैत का भाव ये बिसर गया, बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोई पाई, कि वो बिसर गया, वो एक नफरत करना भूल गया। भक्तजन आज भी यही पैगाम यही संदेश दे रहे थे कि अगर भूलना हमारे हिस्से में आया ही है तो यही सबसे ज़्यादा भूलना हो जाए कि हम वैर भूल जाएं, नफरत करना भूल जाएं, ईर्ष्या करना भूल जाएं, अभिमान करना भूल जाएं, दीवारें खड़ी करना भूल जाएं, ये भूल जाएं तो बहुत बेहतर होगा। और दूसरी तरफ याद भी रहे कुछ, और वो याद वो रहे जिसके कारण मुझे भी आनंद मिले, औरों को भी मैं आनंद देने वाला बनूं, मैं भी एक जीवन के म्यार को ऊंचा करने वाला बनूं और बाकियों के भी मैं काम आ सकूं। तो इस प्रकार से वो सब कुछ याद रहे, वो केवल याद ही ना रहे, वो पूरी तरह से रच जाए, रोम रोम में रच जाए, मेरे ख्यालों में रच जाए, मेरी सोच में रच जाए, मेरी भावनाओं में रच जाए, इतना गहरा वो हिस्सा बन जाए मेरे जीवन का जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो याद रहे। तो जो विसारे दूजा भाव जियो, द्वैत का भाव वो भूल जाए, विपरीत जो कुछ भी है वो सब भूल जाए, वो मेरे जहन में आए ही ना, अगर आए भी तो जैसे हवा छू के आगे निकल जाती है, इसी तरह से जो विपरीत है वो इसी तरह से अगर आया भी है छू के आगे निकल जाए, वो डेरा ना बना ले, वो मेरे जीवन का रूप ना बन जाए, वो मेरे जीवन का हिस्सा ना बन जाए, उससे तो तौबा ही भली। तो इस प्रकार से ये एक महापुरुष संत जनों ने हमेशा हमेशा से हर इंसान को यही उपदेश दिए हैं, यही संदेश जो दिए गए हैं इसी पे आधारित है। चाहे भाषाएं बदल जाएं, अभी भी परसों शुक्रवार से मुंबई में महाराष्ट्र का 49th समागम आरंभ होने जा रहा है, और उसी के लिए ही जैसे अभी भी जिक्र हुआ, महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि आज की टिकट बुक कराई हुई थी, तो दास का भी पहले 16 तारीख को बाय रोड मुंबई का प्रोग्राम बना, और फिर आज ही 20 तारीख फिक्स हो गई थी जाने के लिए, लेकिन इसमें भी तब्दीली आई। तो दास जो बात कह रहा है कि वहाँ पर मराठी भाषा 3 दिवसीय समागम और तीनों दिन अक्सर 80% मराठी भाषा इस्तेमाल होती है, कोई तुकाराम जी के अभंग बोल रहा है, कोई नामदेव जी की वाणी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपनी ही जो प्राप्ति हुई है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव वो मराठी भाषा में ही अभिव्यक्त करते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए। तो इसी प्रकार से चाहे बांग्ला हो, उड़िया हो, चाहे गुजराती हो, राजस्थानी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, कोई भी भाषा हो, महापुरुष संत जन जिस सच्चाई का जिक्र करते हैं, जिसकी प्राप्ति के ऊपर जोर देते हैं, जिसके साथ नाता जोड़ने को अहम बताते हैं, जो दिव्य गुण है जीवन में, तो उसके लिए कोई भी भाषा हो, हर भाषा में यही पैगाम देते हैं, यही संदेश देते हैं, जिसके द्वारा इंसान लाभान्वित हो सकता है। दुनिया में भी हम लाभ तो तभी प्राप्त करते हैं अगर हम उस तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाता है, तभी हम लाभान्वित होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी इंसान को महापुरुषों का पैगाम यही रहा है, चाहे पगड़ी वाला है, टोपी वाला है, कोई भी है, किसी भाषा वाला है, कोई पहरावे वाला है, किसी कल्चर किसी संस्कृति में पैदा हुआ है, किसी भी मुल्क का वासी है, औरत के रूप में है या मर्द के रूप में है, कोई भी है, चाहे राजा बन जाए, चाहे प्रजा का हिस्सा हो, चाहे पढ़ा हुआ है चाहे अनपढ़ा है, हर किसी के लिए इसकी अहमियत है, हर बंदे के लिए इसकी अहमियत है। तो इसीलिए जो अहम है उसी के ऊपर जोर देते आए हैं, जो अहमियत रखता है हमारे जीवन में उसी के ऊपर जोर दिया गया है, बार बार जोर दिया गया है, बार बार चेताया गया है, बार बार एक वर्ड ऑफ कॉशन भी दिया गया है, चेतावनियां भी दी गई हैं। चेतावनी शब्द जब इस्तेमाल होता है, वर्ड ऑफ कॉशन जब कहा जाता है, उसका मतलब यही होता है कि अगर तुम इसकी तरफ ध्यान नहीं धरोगे तो उसके नतीजे कोई बेहतर निकलने वाले नहीं हैं, ना तुम्हारे परलोक के प्रति ना तुम्हारे लोक के प्रति कोई एक ऐसे नतीजे निकलने वाले नहीं हैं। इसलिए अक्सर कहते हैं कि उसको कॉशन दे दिया गया है, ही हैज़ बीन गिवन द वर्ड ऑफ कॉशन सो दैट ही शुड बी वेरी केयरफुल। तो इसी प्रकार से ये महापुरुष एक कौशन भी देते आए हैं, ये चेतावनी भी देते आए हैं। जैसे इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि ये चेतावनी मत सहसा रह जाए, कि ये चेतावनी मत सहसा रह जाए, कि इसको हल्के से मत लेना, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। इसलिए संत महात्मा प्रेरणा भी देते हैं, चेतावनी भी देते हैं, प्रेरित भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं, उठाते भी हैं, जगाते भी हैं, राह भी दिखाते हैं, राह भी सुझाते हैं, और राह पे भी नहीं ही नहीं मंजिले मकसूद तक पहुंचाते हैं। इसलिए जिनको ऐसा संग मिल जाता है उन्हीं के सबसे ऊंचे भाग्य माने जाते हैं, उसी के ऊंचे भाग्य माने जाते हैं। दुनिया में भाग्यवान वो होता है जिनको दुनियावी उपलब्धियां और प्राप्तियां हो जाए तो वो भाग्यवान हो जाता है, जिनको ये प्राप्त नहीं होती तो वो बदकिस्मत माना जाता है, वो किस्मत का मारा माना जाता है। लेकिन महापुरुषों की परिभाषाएं, वलियों गुरु पीर पैगंबरों की परिभाषाएं बिल्कुल भिन्न होती हैं। दुनिया में जीना किसको कहा जाता है, मरना किसको कहा जाता है, महापुरुषों की वाणी में, महापुरुषों की परिभाषा में वो कुछ और मायने रखता है। इसी प्रकार से ऊंचाई और गिरावट ये किसको कहते हैं, ये महापुरुषों की अपनी परिभाषा है, दुनिया की अपनी परिभाषाएं हैं। दुनिया में ऊंचाई यानी कि दुनियावी उपलब्धियां और प्राप्तियां, तो ऊंचाई प्राप्त हो गई है, और गिरावट उसको मानते हैं जो वो सब कुछ नहीं है। लेकिन महापुरुष संत जन ऊंचाई उसी को मानते हैं जो वास्तविकता में इस ऊंचे के ऊपर आधारित है, इस ऊंचे से जुड़ के जो जीवन जिया जाता है, जो विनम्र रहता है, जो अपनाने का भाव रखता है, वो ऊंचा हो जाता है। तो जो इनसे विपरीत भावनाओं वाला होता है वो गिरावट की ओर जाता है। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं बिल्कुल भिन्न है। आँखों वाला कौन है और अंधा कौन है? सरसरी तौर के ऊपर साधारण रूप में तो अंधा वही है जिसके चेहरे के ऊपर लगी हुई आँखें उनमें ज्योति नहीं है, वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन महापुरुषों की परिभाषा क्या है, वलियों गुरु पीर पैगंबरों की क्या परिभाषा है कि अन्य से ना आखिए जिस मुख जिन मुख लोए नाई, अन्य से ही नानका जो खसमों को थे जाए, कि वाकई ही वो अंधे हैं जो इस सत्य को नहीं देखते हैं, जिनको ये ज्योत नहीं मिली है, जिनको ये रोशनी नहीं मिली है, जिनको वो नज़र नहीं मिली है, वो अंधे हैं। तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जनों के जो कथन हैं वाक्य ही ये वही समझ पाता है जो जिनको संग मिल जाता है ऐसों का, जो खुद ऐसी समझ प्राप्त कर चुके होते हैं, वरना दुनिया इस बात को पकड़ नहीं पाती है, इस रमस को जान नहीं पाती है। तो इसी रमस को सुलझाते हैं महापुरुष संत जन, भक्त जन, ब्रह्म ज्ञानी, जो इंसान लाख पढ़ने वाला भी हो, कितने कितने लोग संसार में हैं जो कितना कुछ पढ़ जाते हैं, कितने धर्म ग्रंथ पढ़ जाते हैं। आप में से ही अनेकों ऐसे महापुरुष भक्त जन हैं जो अपनी ही जुबानी बयान देते हैं कि हमारे घर का वातावरण ही ऐसा था कि हम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उनके अपने बयान के सारी उम्र पढ़ लेने के बावजूद ऐसी बातें हमारी पकड़ में ही नहीं आई जो यहाँ सत्संग में आके हमें सोझी मिली, वो नज़र मिली, वो समझ आई इस परमात्मा किसको कहते हैं, इसकी पहचान क्या है। सारी उम्र पढ़ने के बावजूद अपनी माता पिता के साथ बैठकर आसन लगाकर नित्य प्रति पढ़ लेने के बावजूद भी किस तरह से चूकते रहे, और आखिर अंततः ऐसा संग मिल गया, वही जो बात जो पकड़ से बाहर रही वही पकड़ में आ गई। तो इस प्रकार से कहने का भाव क्या है कि महापुरुषों का, संतों का, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों का यही ध्येय रहा है, यही उनका मकसद रहा है, कोई और मकसद नहीं रहा है। मकसद यही रहा है कि हर इंसान का उद्धार हो जाए, हर इंसान का कल्याण हो जाए, हर आत्मा का कल्याण हो जाए, हर मन सुंदर बन जाए, हर जीवन में निखार आ जाए, वातावरण सभी जगह का सुखद बन जाए, यही उनका अभिप्राय रहा है। और आज भी महापुरुषों का यही मकसद है जिसके तहत ये सत्संग का भी आयोजन किया गया है। तो अब सत्संगत दास और अधिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि समय हो चुका है और आजकल सर्दियों के दिन भी हैं, तो इसलिए इन्हीं शब्दों को यहीं विराम देते हुए दास आपसे इजाज़त चाहेगा, यही अरदास प्रार्थना करते हुए कि दातार कृपा करे सबके हिस्से में ये सच रूपी दौलत आ जाए, हर किसी की अज्ञानता का अंधकार छटे और एक ज्ञान उजाले से युक्त होकर अपनी आत्मा का भी कल्याण करें, मन को भी रोशन करें और जीवन के सफ़र को अपनेपन के भाव से युक्त होकर प्यार के साथ, मिलवर्तन के साथ, दया करुणा के भाव से युक्त होकर एक दूसरे के काम आते हुए इस तरह से जीवन के सफ़र को सभी तय करते चले जाएं, यही शुभकामना है सत्संग जी। धन्यवाद।